नीति वचन अध्याय पांच। नीति वचन अध्याय पांच पद एक और दो। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। अब सुलेमान अपने पुत्र को पराई स्त्री से सावधान करता है। नीति वचन अध्याय पांच पद तीन और चार। क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नग दौना से कड़वा होता है। चाहे उसके ओंठों में मधु टपकना हो, खूब मिठास और चीनी टपकती हो, तो भी अंत तो कड़वा है, इतना कड़वा जैसे नग दौना। चाहे उसका मुंह तेल के समान चिकना हो, अंत में ये अध्याय पांच पद चार में आगे लिखा है, दो धारी तलवार से पैना होता है, जो आपको टुकड़ों में काट देगा। नीति वचन अध्याय पांच पद पांच। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। वास्तव में वो यहां एक वेश्या या एक पर पुरुष गामिनी और पराई स्त्री के बारे में बात कर रहा है। अध्याय पांच पद छह से लेकर ग्यारह तक। इसलिए उसे जीवन का समतर पथ नहीं मिल पाता, उनके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, जब तुझे यौन रोग हो जाए। नीति वचन अध्याय पांच पद ग्यारह और बारह। तब ये कहकर हाथ मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने कैसे ये सब किया। अपनी मूर्खता के पछतावे से अपने आप को बचाओ। नीति वचन अध्याय पांच पद तेरह। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया, फिर पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तब आपको दुख होता है और आप सोचते हैं, मैंने अपने शिक्षकों की बात क्यों न सुनी, अपने सिखाने वालों की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। नीति वचन अध्याय पांच पद चौदह और पंद्रह। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, दूसरे शब्दों में अपने वैवाहिक संबंधों का अपनी पत्नी के साथ आनंद लेना, अपने जलाशय का पानी पिया करना, पानी की तलाश में कहीं और मत जा। नीति वचन अध्याय पांच पद सोलह। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। सड़कों में बहने वाली चीजों का पीछा ना करना, अपने आप को शुद्ध रखना। नीति वचन अध्याय पांच पद सत्रह से लेकर उन्नीस तक। ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हिरनी या सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। बाइबल विवाह के बारे में प्रेम संबंध और प्रेम की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ कहती है। परमेश्वर ने विवाह को ठहराया है। आरंभ में जब परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, उसने कहा, मती 9 अध्याय 5 और 6 पद, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए परमेश्वर ने आत्मिक शिक्षा की पूरी समझ के साथ हमारे शरीर को और हमें बनाया है। हमारा शरीर ही सब कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा है जो हमारे शरीर में वास करती है। परंतु हमारे शरीर की कुछ जरूरतें हैं। हमारे शरीर में कुछ रसायन काम करते हैं जो ग्रंथियों से निकलकर दिमाग तक संकेत भेजते हैं और वे हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। यदि मैं दौड़ूं तो मैं काफी ऑक्सीजन खींचता हूं और वो मेरे खून के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में जाती है और तब मांसपेशियां उसे खर्च करती है। ऑक्सीजन खर्च होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड मेरे खून में एक निश्चित मात्रा में मिल जाता है तो वो मेरे दिमाग को सूचना भेजता है। वो कहता है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है जिसे आपको छुटकारा चाहिए और कोशिकाओं को ताजी ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। मेरा दिमाग इस रासायनिक सूचना को जो शरीर से आती है फेफड़ों को भेजता है क्योंकि शरीर इस रासायनिक संरचना का तंत्र है। दिमाग फेफड़ों को सूचना भेजता है कि ऑक्सीजन ले और मैं हांफने लगता हूं। मेरी हृदय गति बढ़ जाती है। इस तरह मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता और ताजी ऑक्सीजन अंदर लेता हूं और इसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं जो मेरे शरीर को संतुलित रखता है। यदि मेरे शरीर में नमी की कमी हो जाए तो मेरे दिमाग को ये संदेश भेजा जाता है, तुम्हें पानी की आवश्यकता है। दिमाग मेरे गले को संदेश भेजता है, अंदर सूखा हो रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। मैं बाहर पसीना बहा रहा हूं तो मेरे शरीर की नमी का स्तर संकटमय हो सकता है। इसलिए शरीर के रसायन प्रतिक्रिया करते हैं और मुझे प्यास लगती है। परमेश्वर की व्यवस्था अद्भुत है। यदि वो ऐसी व्यवस्था नहीं बनाता तब आप दौड़ते तो फिर गिरकर मर भी सकते थे। कार्बन डाइऑक्साइड की खून में अधिक मात्रा और आवश्यक ऑक्सीजन की कमी से आप शीघ्र ही मर जाते। आप ज्यादा दूर और तेज दौड़ नहीं पाते और गिरकर मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने यह संतुलन की प्रणाली बनाई है, हवा का, प्यास का प्रयोजन और फिर कोशिकाओं की दूसरी तरह की ऊर्जा की मांग जिसे भूख लगती है। कहीं कहीं ये व्यवस्था पेटूपन में बदल गई है। मुझे निश्चय है कि जितना मैं अब खाता हूं उतना खाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर खाना तो है। ये पूरी व्यवस्था के काम करते रहने का नतीजा है। परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी मनुष्यों से भर जाए, इसलिए परमेश्वर ने प्रजनन अंग की शरीर में रचना की। परमेश्वर ने यौन इच्छा की रचना की और उसने इस अनुभव को उत्तेजनापूर्ण और बहुत आनंददायक बनाया ताकि संतान उत्पन्न हो। ऐसा नहीं होता तो मानव शायद पृथ्वी पर से वर्षों पहले समाप्त हो गया होता। तब मनुष्य शायद मछली के शिकार में अधिक आनंद प्राप्त करता। ये परमेश्वर की बनाई एक संरचना है जिसका उद्देश्य मूल रूप से पृथ्वी पर आबादी बढ़ाना है। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया कि इसको संतुष्टि के साथ विवाह की वाचा में पूरा किया जाए, जहां दो विभिन्न लिंग परमेश्वर के सम्मुख वाचा बांधते हैं कि जब तक मृत्यु उन्हें अलग न करे, वे एक दूसरे को प्यार करेंगे और आदर देंगे। इसलिए सारी बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार है। ये परमेश्वर के कार्य करने की विधि का एक मार्ग है। ये अपने आप में बुराई नहीं है, ये अति सुंदर और चाहने योग्य है। परमेश्वर ने इसकी रचना की ताकि ये पति और पत्नी में एक हो जाने का गुण अनुभव ठहरे, जहां दो शरीर मिलकर एक शरीर हो जाते हैं। परमेश्वर ने इस सुंदर अनुभव को आत्मिकता के रूप में प्रदर्शित किया, जो मसीह और कलीसिया के बीच में संबंध गुड़ प्रेम एवं एकता में है। जब परमेश्वर ने इसकी रचना की थी, तब ये एक महिमाविंत काम था जो बाद में पाप में बदल गया, उसका उद्देश्य खो गया, इसका सदुपयोग बिगाड़ दिया गया, वो गलत हो गया और अब वो बुराई से भरा है। इसके द्वारा सब बुराइयां निकलती हैं, वो नकली उपज बन गया है। इसलिए यहां परमेश्वर कहता है, और निश्चय ही सुलेमान अपने पुत्र को उपदेश देता है कि वो परमेश्वर के सुंदर वरदान अर्थात जीवन के जल को छलकते हुए सड़कों पर किसी के पीछे ना जाना, परंतु अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहना, उसके प्यार से सर्वदा संतुष्ट रहना। नीति वचन अध्याय 5 पद 20। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? और अब अग्नि परीक्षा आती है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर आपको देख रहा है, ऐसा काम छिप कर भी न करना, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। तब वहां क्यों जाते हो? दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। पुत्र के लिए पिता की अच्छी सलाह, ये हम सब के लिए भी अच्छी और सीधी स्पष्ट सलाह है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम बुद्धि के मूल्य को समझें, हम उसको खजाने की तरह ढूंढें। परमेश्वर, हम बुराई से दूर रहे, हम बुराई को सहन न करें और न अपने जीवन में उसे स्थान दे, परंतु उससे भागे, ताकि हम प्रभु तेरे सत्य के मार्गों पर धार्मिकता से चल सके। हमारी सहायता कर कि हम तेरी आज्ञाओं और तेरी व्यवस्था पर ध्यान दें और तेरी व्यवस्था और शिक्षा को माने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।